ओम शांति।
ओम शांति। आज का विषय है स्नेह और शक्ति का बैलेंस। सबसे पहले हम देखेंगे स्नेह के विषय में। स्नेह एक ऐसी अपने आप में शक्ति है कि स्नेह के बिना ये संसार चल नहीं सकता है, ये विश्व नहीं चल सकता। प्यार एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे छोटा हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, सबको क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्यार चाहिए। आपको क्या चाहिए? प्यार चाहिए। बाबा के घर क्यों आए हैं? बाबा का प्यार पाने के लिए आए हैं। तो प्यार के बिना किसी भी विश्व की आत्मा को प्यार के बिना नहीं चलता है। हरेक को उसकी आवश्यकता है, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। एक है कि प्यार मिले नहीं तो भी नहीं चल सकता है। दूसरी बात ये भी है कि प्यार हम दूसरों को न दे तो भी नहीं चल पाते हैं। प्यार की लेन देन है, मिलना भी चाहिए मुझे और मैं भी किसी न किसी को प्यार देती जरूर हूं। कई बार विदेशों में देखा है कि अकेले रहते हैं, आत्माओं से प्यार नहीं कर पाते हैं तो वो पशुओं से प्यार करते हैं, ना? पक्षी को पालते हैं, पशु को अपने घरों में पाल के रखते हैं, उनसे वो प्यार करते हैं। जैसे मनुष्य को प्यार करे ऐसा ही उसको गले लगाते हैं, चुम्बन करते हैं। मैंने बॉम्बे में एक लेडी देखी थी, विधवा थी और बिल्लियों से प्यार था। 18 बिल्लियों के बीच में रहती थी वो, बिल्ली से उसको बहुत प्यार था। उनके घर में जाओ तो इधर उधर बिल्लियां ही घूमती हुई आपको दिखाई देगी। भाव मेरा ये है कि व्यक्ति कहां न कहां अपना प्यार दिखाए बिना, दिए बिना भी नहीं रह पाता है। कोई तोते को पालकर उसको प्यार करते हैं, कोई कुत्ते को पालकर, चलो वो सब छोड़ो तो कईयों को है ना पौधों से बहुत प्यार होता है, गार्डनिंग। छोटा सा भी घर होगा ना, पौधों के प्रति इतना उनका प्यार होता है कि उसको कुछ हो जाए तो उनकी जान चली जाती है। इतनी तकलीफ होती है उस पौधे की, इतनी वो संभाल करते हैं, प्यार करते हैं। तो प्यार लिए बिना भी नहीं रह सकते हैं और दिए बिना भी जीवन नहीं है। मैंने बॉम्बे में एक ज्वेलर भाई थे जो डिप्रेशन में आ गए थे और डॉक्टर ने कहा, और वो सेंटर पर आए थे। डिप्रेशन का कारण यही था कि बहुत बड़ी ज्वेलरी की शॉप थी, उसकी लड़की की शादी भी नेचुरल है, धनवान होते हैं वो, धनवान घर ही ढूंढते हैं, और वहां लड़की की शादी कराई। साधन सुविधा संपत्ति सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन कुछ ही समय में, शादी के कुछ ही समय में, बहुत कम समय में, बहुत बड़ी ऊंची मंजिल पर रहते थे और वहां से जंप लगाकर सुसाइड कर दिया। अभी बाकी सब कुछ था, कमी किस चीज की? बस प्यार, प्रेम, स्नेह चाहिए। उसके बिना मानव का जीवित रहना, किसी भी एक का भी प्यार मिले तो व्यक्ति जी लेता है, साधन न भी हो न तो, जैसे पौधा होता है उसको भी खाद मिले, प्रकाश मिले, लेकिन पानी न मिले तो वो सूख जाता है। गर्मियों के दिनों में जब माउंट पर जाते हैं ना, पहाड़ियों पर सूखे होते हैं झाड़, जले हुए होते हैं। अभी जाओगे तो ग्रीनरी है, हरियाली है। बिना पानी पौधा भी हरा भरा नहीं रहता है, जीवित नहीं रहता है। ऐसा मानव भी प्यार के पानी के सिंचन के बिना उसका भी जीना मुश्किल है। तो स्नेह वो चीज है, उसकी आवश्यकता इतनी है। स्नेह आज भी हम सभी बाबा के घर आए हैं, बाबा के बने हैं, उसमें भी देखेंगे कि मेजोरिटी, अरे हाथ उठवाऊं तो बाबा के घर का प्यार ही बाबा के तरफ आत्माओं को ले आया है, ऐसा है ना? जो जो बाबा के प्यार से आए हैं बाबा के घर, हाथ उठाओ। बाबा के बने हैं, जीवन दी है, देखो मेरे सहित सब प्यार से ही आए हैं। बिना प्यार ज्ञान तो बाद में समझ में आता है, धारणाएं भी काफी समय के बाद होने लगती है। पहले किसने खींचा है? प्यार ने खींचा है। प्यार के बिना जीवन नहीं चलता। लेकिन देखो आज भी विश्व जो चल रहा है, आज भी दुनिया चल रही है, वह भी प्यार से ही चल रही है। लेकिन प्यार में दो प्रकार के प्यार हैं, एक शुद्ध प्यार है, एक विशुद्ध प्यार, अशुद्ध प्यार है। प्यार है आज के संसार में भी, जो प्यार है वो अशुद्ध है, जिसमें स्वार्थ है, कामना है, वासना है, ईर्ष्या है, प्रेम के अंदर छल है, कपट है, बनावट है, धोखा है। प्यार तो है, आज के से कुछ वर्ष पहले देखो तो प्यार की पिक्चरें भी नहीं थी। आज की जितनी प्रेम पर पिक्चर बनी है, हजारों प्यार के गीत है, हजारों कहानियां हैं प्रेम की, लेकिन फिर भी आज मानव शुद्ध प्योर प्यार का प्यासा है। इतनी कहानियां, इतने गीत और इतनी प्यार की बातें हैं, बात मत पूछो, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टता मानव के जीवन में आज नहीं है। फिर भी कहता है कि मुझे प्यार नहीं मिला है, मुझे प्यार नहीं मिलता है। सेंटर पर आते हैं ना, मेजोरिटी की ये बात होती है, माँ का प्यार नहीं, कोई कहते हैं मेरे भाई का प्यार नहीं, कोई कहता है मेरे पति का प्यार नहीं, इसका प्यार नहीं, उसका प्यार नहीं। प्यार की कमी है। क्यों? ये अशुद्ध प्यार वो संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे प्योर दूध है, आप थोड़ा सा पियो ताकत मिलेगी, और पानी मिला करके उससे अधिक पी लो, लेकिन उससे बल कितना मिलेगा? कम मिलेगा ना, ऐसे समझते हैं ना। जैसे खाने की, पीने की, हवा, पानी, अब सब में अशुद्धि है, पॉल्यूशन है, ऐसे वर्तमान समय पर प्यार में भी पॉल्यूशन है। ऐसा महसूस होता है ना कि उसमें भी ये चीज है, प्योर प्यार नहीं है, और इसीलिए रियल स्नेह नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है, और इसीलिए प्यार का शो बहुत करना पड़ता है। रियल गोल्ड और इमिटेशन ज्वेलरी, उसमें ज्यादा चमक धमक ज्यादा चाहिए तो लोग आकर्षित होंगे। तब मुझे याद आता है कि 80-100 वर्ष पीछे चले जाएं, तभी भी ज्वेलरी बिक्री होती थी, अनाज है, कपड़े हैं और चप्पल शूज, वो सब सेल होता था, दुकानें हुआ करते थे। और अभी क्या है, शोरूम। अभी क्या है, अभी जूतों के लिए भी क्या चाहिए, शोरूम। और कितने सजा करके रखे जाते हैं, जो पहनने तो पैर के नीचे जाने वाले हैं वो, है ना, और उसको रखा जाता है। आप शोकेस में देखेंगे अपने सर के भी ऊपर होता है, शोकेस में रखा हुआ है ना ऐसा। तो भी उसका शो करने की जरूरत क्यों पड़ गई है, हर चीज के शोरूम चाहिए, क्योंकि रियलिटी, सच्चाई, प्योरिटी हर चीज से चली गई है। और इसीलिए उसको सेल करने के लिए, बिक्री करने के लिए क्या बनाने पड़ रहे हैं, क्या बनाने पड़ रहे हैं, शोरूम बनाने पड़ रहे हैं। ऐसे आज भी दुनिया में भी सच्चा प्यार नहीं है, इसीलिए शो बहुत करना पड़ता है, प्यार का दिखावा बहुत है कि इसका और मेरा प्यार बहुत है, है ना। रास्ते में चलते चलते हाथ पकड़ के चलेंगे, गले लगा के चले, अरे दूसरों को दिखाने का थोड़ी है, ये है नहीं, लोगों को एहसास हो इनका और मेरा प्यार है, इसलिए दिखावा करना पड़ता है। तो अभी वो प्यार है, और उसी के कारण ही देखो तो संसार में दुख, अशांति, लड़ाई, झगड़े, क्योंकि सच्चा प्यार नहीं है, झूठा प्यार है। लेकिन स्नेह की आवश्यकता उतनी ही है, स्नेह के बिना चलने वाला नहीं है, लेकिन स्नेह और शक्ति, ये दोनों चीजों का क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। अति शक्ति वो भी नुकसानकारक, और अति स्नेह भी नुकसानकारक है। तो हम सबने अपने जीवन में लेन देन में स्नेह का कितना महत्व है, इम्पोर्टेंट कितना है स्नेह का, ये तो हमने समझा। अभी स्नेह और शक्ति का बैलेंस चाहिए, तो शक्ति के महत्व को भी समझना है कि शक्ति माना एनर्जी, पावर, ताकत, बल कह सकते हैं शक्ति को। अभी शक्ति अलग अलग प्रकार की है, धन की शक्ति भी है, तन की शक्ति भी है, मन की शक्ति भी है, सत्ता की भी शक्ति है, आपके पास सत्ता है तो पावर है, सत्ता की भी शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, बहुत अलग 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 प्रकार की एनर्जी, पावर, ताकत, बल है। लेकिन इनका बैलेंस, ये हमारे जीवन में आवश्यक है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे व्यावहारिक जीवन हो, हर जगह पर बैलेंस की जरूरत है। आप देखेंगे कि तन के अंदर भी हम चलते हैं, एक पांव हमारा शॉर्ट हो तो चलने में तकलीफ होगी ना, बैलेंस नहीं है। हमारी इंटरनल बॉडी की जो सिस्टम है उसमें भी बैलेंस जरूरी है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो बैलेंस में होना चाहिए, बढ़ जाए तो हाई बीपी, और ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो गया तो लो बीपी। जरूरी है ना बैलेंस, श्वास नॉर्मल होने चाहिए, बहुत श्वास चलने लग जाए तो बैलेंस नहीं है ना, वो श्वास बंद हो जाए तो भी ठीक नहीं है, कम हो जाए तो भी ठीक नहीं, बहुत स्पीड से चलने लगे तो भी सही नहीं है, इसको भी बैलेंस नहीं कहेंगे। हमारी ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, उनके अंदर भी बैलेंस जरूरी है। पानी भी हमारे शरीर के अंदर कुछ मात्रा में चाहिए, हीट भी चाहिए गर्मी, बहुत गर्मी बढ़ गई तो बुखार, और गर्मी कम हो गई तो कहते हैं शरीर अभी इनका ठंडा पड़ गया, अभी जा रहा है, तो भी ठीक नहीं है। हर चीज का शरीर के अंदर भी, तन के अंदर भी, ऐसे ही भोजन लो उसमें भी क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। कोई भी एक चीज को अधिक मात्रा में ग्रहण करे, स्वीकार करे, तो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। सोने और जागृत रहने का भी बैलेंस चाहिए। अति निंद्रा या नींद का नहीं आना, जागते रहना, ये भी एक बीमारी मानी जाती है, भाई नींद नहीं आती है तो वो भी बीमारी मानी जाती है। नींद समय पर सोना भी, और समय पीरियड है कि कितना घंटा सोना चाहिए, कितना घंटा जागृत रहे, कितना घंटा सोए। व्यायाम के अंदर भी बैलेंस, आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, व्यायाम जरूरी है, लेकिन हर व्यायाम का भी एक टाइम होता है, ये इतनी बारी, पांच बारी करो, ये दस बारी करो, ये इतनी बारी करो, इतनी बारी, समझो एक ही व्यायाम आपने अधिक मात्रा में कर लिया तो भी उससे बॉडी को नुकसान होता है। एक माता थी ना, तो उसने सुना कि भाई साइकिलिंग करना चाहिए पैरों की एक्सरसाइज के लिए, खूब साइकिलिंग की, तो यहाँ घोड़ों में क्या हो गया, घुटनों में तकलीफ हो गई। व्यायाम जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन उसका भी क्या चाहिए, बैलेंस। प्रकृति में भी पांच तत्व है, उनका भी, अभी प्राकृतिक आपदाएं जो आती है उनका कारण भी क्या है, ये तत्व तमो प्रधान बने हैं, इसलिए इनबैलेंस हो गया है और इसीलिए नुकसान हो रहा है। अभी बिहार और आदि में खूब बाढ़ आई, कितने लोग मर गए, कितने बेघर हो गए। आज अपने विद्यालय के तरफ से भी गाड़ियां ट्रकें सहयोग के लिए भेजी, तो हर प्रकृति भी इनबैलेंस होती है, ये तत्व भी। हवा भी नॉर्मल चले तो ठीक है, और हवा की स्पीड बढ़ गई तो कहते हैं साइक्लोन आया, है ना? नदी अपने एक प्रवाह में बहती है तो ठीक है, लेकिन उसकी भी स्पीड बढ़ गई तो बाढ़ आ गई कहते हैं। हर चीज का बैलेंस जरूरी है, और जब बैलेंस बिगड़ता है तो नुकसान अवश्य होता है। हमारे जीवन में भी स्नेह और शक्ति, ये दोनों का क्या चाहिए, बैलेंस। आप परिवार में रहते हो, गृहस्थ में, आप सब एक्सपीरियंस वाले हो, किसी भी व्यक्ति को बहुत प्यार दो, बहुत प्यार, बहुत प्यार, तो फिर कहते ये तो बिगड़ गए हैं। क्यों बिगड़े, कहते बहुत प्यार मिला उनको, उनके साथ साथ समझ नहीं मिली, सिर्फ प्यार मिला, शिक्षाएं नहीं मिली, समझ नहीं दी गई, सिर्फ प्यार ही दिया गया। समय प्रति समय, बच्चे हो या और भी कोई हो, स्नेह देना है जरूर, लेकिन यदि स्नेह के साथ साथ जरूरत जहाँ आवश्यक हो वहाँ स्ट्रिक्ट होने की भी जरूरत है, एक्शन लेने की भी जरूरत है। यदि नहीं लेते हो तो उनके अंदर चेंज नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं होगा, अकेले स्नेह से भी नहीं और अकेले शक्ति से भी नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर कि एक फैक्ट्री है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, उनके पास सत्ता है, उस सत्ता की शक्ति को यूज करें। अब नीचे जो काम करने वाले होंगे उनको तो जॉब की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे, वो रॉब करे, गुस्सा करे, डांट दे, अपशब्द बोल दे, तो भी वो कार्य तो उनको करना है। सत्ता की शक्ति को यूज कर रहे हैं कार्य करवाने के लिए, लेकिन उस शक्ति का अति उपयोग स्नेह के बैलेंस के बिना, सिर्फ आप सत्ता की ताकत यूज करके कार्य करवा रहे हो, उसको आवश्यकता होगी तो वो कर तो लेगा लेकिन बददुआएं देगा, आपके साथ के रिलेशन में दूरी होगी, हमारे प्रति अशुभ विचार उनके मन में निकलेंगे, नफरत की भावना पैदा होगी, घृणा भाव पैदा होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजों से उस शक्ति से कार्य करवा सकते हो, लेकिन रिस्पेक्ट का भाव हमारे प्रति जो है वो समाप्त हो जाएगा, हमारे प्रति स्नेह का भाव, सम्मान का भाव वो समाप्त हो जाएगा। कर तो लेगा वो, क्योंकि हमने सिर्फ सत्ता की शक्ति ही यूज की। उसी जगह पर स्नेह के साथ साथ हम स्ट्रिक हुए, ये कार्य बहुत प्यार से, धीरे से, शांति से, देखो आज दिन में इतना कार्य तो होना ही चाहिए और करना जरूरी ही है, करना ही पड़ेगा, स्नेह भी है और शक्ति भी, स्ट्रिक्टनेस भी है, बैलेंस। वही चीज जब बैलेंस रख के प्यार से कार्य करवाएंगे तो वो बहुत उमंग उत्साह से कार्य करेगा, हमारे प्रति स्नेह सम्मान का भाव रहेगा और कहेंगे कि देखो हमने ये कार्य नहीं किया था, वो आए लेकिन कितने अच्छे सम्मान के साथ हमको भी, हमारी कमी, हमारी गलती, हमको बहुत रिस्पेक्टफुली हमें बताई गई, स्ट्रिक्ट भी हुए, रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे कहा, तो उससे उनके मन में एक रिस्पेक्ट का भाव, दुआएं, सहयोग की भावना, एक प्यार उनके मन में क्या होगा, उत्पन्न होगा। अकेले शक्ति का उपयोग नहीं लेकिन दोनों चीजों का बैलेंस। तो ये बैलेंस आप सब अपने जीवन में महसूस करते होंगे, चाहे पशु हो चाहे मानव हो, लेकिन दोनों चीजों के बैलेंस में उनकी पालना करो तो ठीक है, और उस बैलेंस को ठीक नहीं रख के करते हैं, बच्चे को भी, उस व्यक्ति को भी नुकसान और हमें भी नुकसान। अब स्नेह के कारण और कौन सी शक्तियां हैं जिसमें हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। सबसे पहले लेते हैं कि स्नेह के कारण हम क्या करते हैं, जिनसे हमें अति प्यार है, बहुत प्यार है, दिल से हम चाहते हैं, उनकी जो गलती होती है तो हम क्या कर लेते हैं, अपने आप में समा लेते हैं, किसी को बताना नहीं है, खुद भी किसी को बताएंगे नहीं, अपने आप में रख लेंगे, प्यार है ना, फिर दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसके लिए, तो मुझे नहीं कहना है। हाँ, समाना बहुत जरूरी है, स्नेह के कारण ही हम समाते हैं, लेकिन कहाँ तक समाना है, कितना समाना है, ये बैलेंस तो चाहिए। परिवार के सदस्यों में से ही किसी को समझो शराब की आदत हो गई, आपको पता चला, आप कुछ दिन छिपाते हो, समझाते हो, आपको होता है समझाने से समझ जाएंगे, अब नहीं पिएंगे, लेकिन आपने छिपाया छिपाया, किसी को बोला भी नहीं, उनको भी पता है कि ये किसी को बताते नहीं है, तो मेरी इम्प्रेशन तो ठीक ही है। बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज को छिपाते हैं तो कोई भी बीमारी हो, कोई भी हैबिट हो, गलत हैबिट, तो वो वृद्धि को पाती है, बढ़ती है ना? अंत में होपलेस केस हो जाता है, और छिपा हुआ तो रहता ही नहीं है। तो यदि हम वहाँ स्नेह के कारण, यदि कोई परिवार के सदस्य हो, चाहे हमारे इस यज्ञ की बात हो, यदि हम छिपा के चलाएंगे तो यज्ञ को नुकसान, हमें नुकसान, वहाँ परिवार को नुकसान, उस व्यक्ति को भी नुकसान, समाना चाहिए। कौन सी बात समानी है, कितने तक समानी है? भले मुझे प्यार हो, लेकिन मेरे से बड़े हो परिवार में भी, उनको बताना पड़ेगा कि देखो बेटे को ऐसी हैबिट हो गई है, या पति को हो गई है, या देवर को हो गई है, बताना तो पड़ेगा ना। नहीं बताओगे तो वो बढ़ती जाएगी और उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, खुद को भी परिवार को भी। तो समाना है स्नेह के कारण, कौन सी बात समानी है, कितनी समानी है, ये बैलेंस का होना जरूरी है। ऐसे दूसरी शक्ति है, स्नेह है, वहाँ सहयोग होता है, मददगार बनते हैं, जहाँ प्यार हो वहाँ हेल्प करने की इच्छा, मदद करने की इच्छा होती है, लेकिन मदद भी कहाँ तक। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि कोई डूबता हो तो उसको बचाओ, उसका हाथ पकड़ो, लेकिन वहाँ तक कि वो आपको डुबो ना दे, आपको ही खींच के लेके जावे नीचे, ऐसा ना हो। किसी भी प्रकार की हेल्प, हम कई बार ईश्वरीय परिवार में भी देखते हैं कि भाई आते हैं आपस में, फिर अलौकिक रिलेशन है, लेकिन एक दूसरे के मददगार बनते हैं, भले बने लेकिन एक लिमिट जरूर रखे। कई बार ऐसा आता है बिजनेस के लिए आते हैं वहाँ ना, बिजनेस करते हैं, दोनों बिजनेस में इनका आपस में स्नेह हुआ, फिर आपस में धन की लेन देन बढ़ी, अभी बहुत सारा धन कुछ बिजनेस के लिए आपस में अंडरस्टैंडिंग में दिया, फिर वो कंपनी डूब गई, अब वो पैसा वापस कर नहीं सकता है और काफी मात्रा में दे दिया, और अभी क्या हो। सहयोग देना है, लेकिन कहाँ तक मदद हमको करनी है, वो भी डूबे हम भी डूबे, वहां तक सहयोग नहीं करना है। ये तो मैंने धन की बात कही, लेकिन और बातें भी, बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता हो, गलत दृष्टि से देखता हो, हमारे साथ व्यवहार ठीक न करता हो, हम छिपा के रखे, उनकी हिम्मत बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर अधिक हिम्मत बढ़ जाएगी, फिर उसमें हम सहयोगी नहीं हो सकते, मददगार नहीं हो सकते हैं, है ना। बैलेंस, स्नेह भी है, मदद भी करनी है, लेकिन कहाँ तक मदद करनी है। तो स्नेह के कारण समाने की शक्ति और स्नेह का बैलेंस, स्नेह और सहयोग का बैलेंस। तीसरी शक्ति है सत्यता की शक्ति, सच्चाई, वो भी एक पावर है, सच सत्य व्यक्ति है ना, ऑथोरिटी से, पावर से बोलता है, झूठा है ना वो हड़बड़ाता है, घबराता है। वहाँ बॉम्बे में लोकल ट्रेनों में कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना टिकट जर्नी करते हैं, पैसा बचाने के लिए। टीसी खड़ा होता है ना, जिसने टिकट ली होगी वो टीसी देखता हो तो उनके साथ आंख मिलाता है, उसके सामने से आगे से पसार होता है, और जिसने न ली हो वो टीसी ऐसे देखे तो वो आंख नहीं मिला पाता है, और उसने देखा तो कोई इधर उधर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, टीसी पकड़ जाता है, इधर आओ, समझ जाता है किसने टिकट नहीं ली होगी, हड़बड़ाने लगता है। सच्चाई नहीं है ना, सत्यता नहीं है, स्नेह है, सच्चाई हो, सत्यता के साथ साथ बाबा ने कहा सभ्यता भी हो। बाबा ने बहुत अच्छे एक स्लोगन में कहा था कि शिक्षा दो, कहेंगे ना भाई मैं सच बताता हूँ, सच्ची शिक्षा देता हूँ, सत्य शिक्षा दे रहे हो लेकिन सभ्यता के साथ दे रहे हो वो शिक्षा, बोलने का हमारा तरीका, सत्य को कड़वा कठोर रफ टफ तो नहीं बोलना है ना, सत्य बोलना है, सत्य कैसा बोलना है हमको, उसका बोलने की विधि और तरीका तो होना चाहिए। सिर्फ हम ये कहते हैं कि नहीं मैं तो जो कहा मैंने सच्चा ही कहा ना, सच्चा कहा लेकिन कैसे बोला, किस तरीके से बोला। एक कहावत है कि भाई अपनी जन्मदाता है उसको माँ कहो और फिर कहो मेरे पिता की बहू, मेरे पिता की वाइफ इधर आओ, अभी माँ को ही बुला रहे हो, है तो सत्य आपके पिता हैं और उनकी वाइफ ही है वो, लेकिन अभी बच्चा ऐसे बुलाए तो माँ को कैसा लगेगा, है तो सत्य ना, लेकिन सत्य वो सभ्यता के साथ हमने नहीं कहा, वो ही जगह पर मम्मी माँ कहो तो कितना अच्छा लगता है, माँ को उसमें प्यार दिखाई देता है, उसने ही दिखाई देता है, सभ्यता है, शिष्टाचार है, शालीनता है उसमें, और वो जो बात मैंने कही वो सुनने में भी अच्छी लगी आपको, मुझे बोलने को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आपको क्लियर करना था इसलिए मैंने भी बोला, बाकी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था वो बोलना। भाव ये है, सत्यता के साथ प्यार है, सत्य कहते हो लेकिन सभ्यता के साथ कहना जरूरी है। ऐसे ही है संगठन की शक्ति, जहाँ संगठन की शक्ति में स्नेह हो, लेकिन संगठन की शक्ति में दो चीजों का बैलेंस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट, दोनों चाहिए संगठन में। बाबा के ही उसमें पढ़ा था हमने कि बाबा ने एक बारी यज्ञ में हलवा बनवाया, दादी भी कई बार ना बहुत बारिश हो चंडी हो गरम गरम हलवा बच्चों को खिलाओ, बनाया, अभी जितने लोग हैं तो हिसाब से बनाते हैं वो हलवा, लेकिन हलवा अच्छा लगा तो एक बहन थी सीतू दादी थी, उनको कहा कि आप हलवा सबको बांटो, तो बांटने लगी, अभी एक व्यक्ति ने लिया और फिर दोबारा मांगा, तो वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं, बाबा को पूछने गई कि बाबा क्या करूं ये दोबारा हलवा मांग रहे हैं। बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची तुमको भी खाने का है ना, तो तुम मत खाना, उसको क्या करो दे दो, तुम्हारे हिस्से का हलवा उनको दे दो। उन्होंने दे दिया ना, सबको हलवा मिल गया। रात्रि क्लास में सब इकट्ठे होते थे, रात्रि क्लास में बाबा रात्रि क्लास कराते थे, कचहरी करते थे, तो बाबा ने मम्मा को कहा सभा में कि मम्मा आज है ना हलवा बहुत अच्छा बना था, और मेरी भी दिल हुई कि मैं दोबारा लूं और खाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं दोबारा लेकर के खाऊंगा तो मुझे देख करके बाकी बच्चे भी क्या करेंगे, दोबारा लेकर के फिर हलवा खाएंगे तो फिर हलवा क्या होगा, कम पड़ जाएगा, तो मैंने नहीं खाया। अर्थात देखो बाबा की सत्य और शिक्षा देने का कितना सुंदर तरीका। बाबा ने और कुछ नहीं बोला है? अपना उदाहरण दिया कि मुझे भी हलवा खाने का मन, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं खाऊंगा तो दूसरे, तो जिन्होंने दोबारा लिया था ना, वो समझ गए है कि हमको क्या करना चाहिए था। और भी एक बात बाबा ने कही कि बाबा कई बार, दादी भी कहते बाबा भी कई बार चॉकलेट है ना ऐसे मुट्ठी से डालते हैं, किसके पास कितनी, किसके पास कितनी चली जाती, किसको नहीं भी मिलती है, किसको चार पांच भी मिल जाती है, तो बाबा ने ऐसे डाली। फिर बाबा ने पूछा बच्चों से, बच्चे पांच चॉकलेट किसको मिली, हाथ उठाया, आपको तो एक भी नहीं मिली है, हाँ आप लोगों को तो अभी नहीं मिली ना, उनको पांच चॉकलेट मिली, चार किसको मिली, तीन किसको मिली, एक किसको मिली, बाबा ने पूछा। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा जिनको चार पांच चॉकलेट मिली उसने क्या किया वो बताओ। किसी ने कहा कि मैंने सारी खा ली, मुझे मिली ना तो खा ली। और दूसरे ने कहा कि बाबा मुझे चार मिली थी लेकिन मैंने है ना बांट करके खाई। देखो उससे शिक्षा मिली कि हमको क्या करना चाहिए ना, बाबा कैसे शिक्षा देता था, कैसे समझाता था, है ना। संगठन है, संगठन में अभी कोई भी चीज बनेगी, एक व्यक्ति बहुत मात्रा में क्वांटिटी में खा ले तो फिर दूसरे को कैसे मिलेगा, बांट करके खाना चाहिए ना, तो जो हिस्से में मिलता है उतना ले। संगठन के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इतने लोगों के लिए चीज बनी है, हिसाब से बनी है तो सबको हिसाब से खानी है। यहाँ भी जब आइसक्रीम होती है ना, समझ गए, देखो मुस्कुराओ भाई, आइसक्रीम होती है तो दिल करती है, मैं भी अभी एक एक व्यक्ति समझे, मैं एक एक लूं तो डबल डबल चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी हिसाब से बनी होगी तो पहले डबल खा ले उनको मिल जाए और पीछे वाले रह जाए, है ना, तो कहेंगे भाई एक एक कप लो, है ना, सबको मिलेगी, कोई बाकी नहीं रहेगा, देखिए एक कप आइसक्रीम मिलेगी। भाव ये है कि जहाँ संगठन में चलना है तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एडजस्टमेंट भी चाहिए कि हमको सबको मिल करके बांट करके हमको उस चीज को खाना है, ये बैलेंस की आवश्यकता है। फिर है रूहानियत की शक्ति, रूहानियत की शक्ति बहुत सौम्य शालीनता जिसमें होती है, अलौकिकता होती है, दिव्यता होती है रूहानियत में। देवियों के दिखाते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं ना, बहुत सौम्य देवियां लगती हैं, रूहानियत उसमें, प्योरिटी उनमें होती है। अब रूहानियत हो, स्नेही हो, दिव्यता हो, लेकिन जहां कोई गलत चीज हो, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा हो, इसलिए देवियों को बहुत सौम्य दिखाते हैं। उसके साथ साथ काली का रूप भी दिखाते हैं, आवश्यकता जहां पड़े वहां काली स्वरूप भी धारण करना पड़े, सिर्फ सौम्य स्नेह का स्वरूप ही नहीं, क्या है उसके हिसाब से हमें उस स्वरूप अर्थात स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप। इसलिए देवी के चेहरे को कितना सौम्य दिखाते हैं, और दुर्गा को दिखाते हैं ना त्रिशूल लेकर के, असुर को उसने क्या किया, मारा, तो दोनों चित्र है, स्नेह भी है और शक्ति। रूहानियत में भी ये बैलेंस चाहिए, वहां पर हम कोमल हो करके नहीं चल सकते हैं, शक्ति स्वरूपा बनना पड़े, और उस समय का हमारा चेहरा, हमारे भाव, हमारी चलन, हमारी बॉडी लैंग्वेज उनसे समझ जाए कि ये चीज इनको पसंद नहीं है, हिम्मत नहीं करे वो, है ना, आंख उठा न सके, उठा के अलग भाव से वो देखने की हिम्मत न करे। हम युग अनुभव करते हैं ना, आप सभी करते होंगे कि कोई गलत भावों से, विकारी भावों से कुछ गलत अंदाज लेकर के आते हैं। हम जब ज्ञान सुनाते हैं उनके तरफ देखते हैं, वो ऐसे ऐसे ही सुनते हैं, आंख उठा के सामने देखते नहीं है, आंखें नीचे करके, सर नीचे करके देखते हैं, हिम्मत नहीं होती उनकी। तो ये दोनों प्रकार का क्या चाहिए, हमारा शक्ति। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान दो, ललकार करके दो, है ना, कहते हैं ना शक्ति स्वरूप हो करके सुनाओ, ज्ञान का ललकार करो। तो दोनों चीजों का हमें स्नेह भरी बातें कहनी है, लेकिन पावरफुल, जिसमें ताकत हो, जिसमें बल हो। फिर है वाणी की शक्ति, क्योंकि वाणी में भी, शब्दों में भी पावर है, उसमें भी शक्ति है। मधुर वाणी बहुत मीठी लगती है ना, प्यारी लगती है वो वाणी, सुखद अनुभव कराती है, वो शांति देती है, आरामदायक होती है। मीठी वाणी कैसी लगती है, मीठी लोरी होती है तो क्या करते हैं, बड़े छोटे सब सो जाते हैं। यहाँ तो कोई सोया नहीं है ना, क्योंकि मैं लोरी नहीं दे रही हूँ। जाग रहे हैं सभी, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। तो मीठी वाणी क्या करती है, बहुत अच्छा अनुभव है वो कराती है। लेकिन मीठी वाणी के साथ साथ बैलेंस, बाबा ने वाणी के ऊपर एक सारी अव्यक्त मुरली चलाई है, बोलना कैसे चाहिए वो बाबा ने सिखाया है कि बोलना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात हमें कही है कि मधुर बोलना है, लेकिन कितना बोलना है, कम बोलो ना? मधुरता के साथ बाबा ने क्या कहा है, कम। मधुर माना बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, किसका सर पक जावे या कंटाल जाए सुन सुन के, इतना भी नहीं। मधुर वाणी जरूर हो, लेकिन लिमिट होनी चाहिए। बाकी तो मीठा भी बोलो, कम बोलो, और फिर क्या कहा है, धीरे से बोलो, कहा है ना। साथ साथ वाणी के अंदर बैलेंस, उस शक्ति में बैलेंस रखने के लिए कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ पर बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए ना। सिर्फ बोलना नहीं है, कहाँ बोल रहे हो, क्या प्रसंग है, कितना बोलना है, किसको बोल रहे हैं, उस हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो इसका बैलेंस बोलने में चाहिए, कहाँ भी कुछ भी किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वाणी का भी क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। कहते हैं वाणी को अमृत वाणी भी कहते हैं, जो अमर रत्व की ओर हमें ले जाती है। और वो वाणी कैसी वाणी होती है, मीठी तो होती है, लेकिन उस वाणी में वो शक्ति होती है कि सामने वाली आत्मा के विकारों को समाप्त कर देती है। कहते इनके सामने मेरा वो सोच काम नहीं आया, मेरा ये व्यवहार उनके सामने चल नहीं सका, एक शस्त्र का काम, उनके विकारों को अस्त व्यस्त कर देती है वाणी। स्नेह भी, लेकिन वाणी में, अमृत वाणी में वो ताकत भी हो, वो वाणी जो बैड हैबिट व्यसनों से मुक्त कर देती है, वो पावर भी हो स्नेह के साथ साथ। और जब वो वाणी अमृत वाणी के साथ साथ कहते हैं कि वो शब्द महावाक्य बन जाते हैं। शब्दों में वो महानता, डायमंड जैसे, हीरे जैसे, देवताओं के मुख के आगे दिखाते हैं ना डायमंड, वो जो बोलते हैं वो हीरे तुल्य, बहुत कम लेकिन बहुत वैल्यूबल चीज, बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। तो डायमंड के समान है वो, महावाक्य है। इन्हीं वाक्यों को वरदानी वाक्य भी कहे जाते हैं कि इनके बोल तो कैसे हैं, वरदानी, वह जो बोलेंगे वह हो जाएगा। वाणी प्यास के साथ साथ वो पावर भी उस वाणी के अंदर हो, ये बैलेंस हो। फिर है पवित्रता की शक्ति, हमारी प्योरिटी ऐसी हो, जो बाबा कई बार कहते थे बाजू से कोई पास होता हो उसको करंट महसूस हो, एक एनर्जी, एक शक्ति उनको महसूस हो कि कौन पास हुआ यहाँ से। बाबा कहते थे कि व्यक्ति गई ना, बाबा परख लेते जिसमें देह अभिमान की बांस आ रही है, परख, इतनी प्योरिटी, इतना अच्छा एटमोस्फेयर, जरा सी दुर्गंध, गलत स्मेल समझ में आ जाएगी। पवित्रता की शक्ति, दादियों के अनुभव हैं कि उनकी पवित्रता की शक्ति से कोई सामने नहीं आ पाए, कुछ सोच लेके आए, उनके सोच में बदलाव, परिवर्तन, चेंज। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में भी आप सबने पढ़ा होगा, कुछ लक्ष्य आया कि ये ब्रह्मा बाबा के कारण ये सब घर छोड़ के गए हैं और वहाँ हैं, न बाबा होंगे तो न ये लोग चलेंगे, चलो इसी ख्याल से आया कि समाप्त करें। बाबा के सामने आया, बैठा, बाबा की वो रूहानियत, वो दिव्यता, वो पीछे बोल, आओ बच्चे, वो प्यार भरे बोल, उसने पानी 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 कर दिया, सोच को बदल दिया। ये है शक्ति, प्योरिटी की पावर, पवित्रता के कारण उस बोल में भी और स्वरूप में भी वह स्नेह का स्वरूप दिखाई दे। मैं अपना आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊं, अभी आप सब जानते हैं अपने माउंट आबू में म्यूजियम है, प्रतिभा बहन वहां रहती है, वहां बॉम्बे हमारे वहां के सेंटर से ही निकली है। वो अपने पियर घर आई थी, शादी हो गई थी, कुछ ही समय हुआ था, शादी हुए कुछ साल हुए थे, पियर घर आई थी, माँ बाप ज्ञान में थे तो उनको भी ले आए सेंटर पर, ले आए और ज्ञान सुना, तुरंत उसको टच हो गया, पसंद आ गया। फिर ससुर घर गई कुछ रिकोर्स वगैरह करके सुन के, तो वहां जाके फिर वो तो धारणाओं की बात, और उनकी शादी हुई थी, उनका पति परिवार में एक ही लड़का था और उनकी सास थी वो डॉक्टर थी, और बहुत धनवान फैमिली में शादी हुई। जब वो आती थी कोर्स करने तो भी कितने गहने बहने पहन करके एकदम सच के आती थी वहां पर शुरू में। अब उसको ये टच हो गया तो बस उसने ठान लिया कि भाई मधुबन में बाबा से मिलने जाना है तो वहां तो पवित्रता चाहिए। बस इतना फिट हो गया उनके दिमाग में, उनके घर में उसने कहा कि भाई ये धारणा मुझे चाहिए, बाकी मैं परिवार में बाकी सब कुछ करने की तैयार हूँ, पवित्रता की धारणा। कुछ समय तो चले लेकिन फिर भी आखिर पति है ने? तो एक बारी उसने कह दिया कि यदि ऐसे चाहिए तो तुम चले जाओ। तो इसने कहा कि भाई मुझे तो आपको पवित्रता चाहिए, पति ने कहा, या मैं चाहिए, आपको क्या चाहिए दो में से, डिसाइड करो आज। उस समय पर बॉम्बे में शिवरात्रि की अपनी यात्रा निकल रही थी और उसी दिन घर में ये बात हुई और वो घर छोड़ करके कि मुझे तो पवित्रता चाहिए, मेरा परमात्मा पिता चाहिए। मुड़ के देखा नहीं फिर उसने। उसके बाद बहुत कोशिश सास ने भी की, पति ने भी, मिलने आते थे उसको वापस बुलाने की, लेकिन ये है कि मेरी प्योरिटी मुझे चाहिए तो मैं आऊंगी, नहीं तो नहीं। तो ये पवित्रता में ये बल है, त्याग। संबंधों का सेकंड में, संपत्ति का सेकंड में त्याग करने की शक्ति पवित्रता में ये पावर है। तो इसका भी क्या चाहिए, बैलेंस, हमें स्नेह भी और शक्ति, दोनों चीजों का बैलेंस। और इसीलिए हर चीज जहां बैलेंस नहीं है ना, आज अपने ज्ञान के सृष्टि चक्र में भी जगदीश भाई ने एक बार सुनाया था कि सृष्टि चक्र ये भी एक प्रेम की कहानी ही है। सतयुग के अंदर कितना रूहानी पवित्र प्यार था ना, आपसी, और इसीलिए उस युग के अंदर सुख शांति संपत्ति सब कुछ वैभव था, अप्राप्त जैसी कोई भी चीज ही नहीं थी जीवन के अंदर। क्यों नहीं थी, पवित्र प्यार, पवित्र विशुद्ध स्नेह था जिसके कारण सब कुछ उपलब्ध था। और वही जो शुद्ध, वही फिर विशुद्ध प्यार, शक्ति भी अशुद्ध और शुद्ध और अशुद्ध शक्ति, ऐसे ही ये प्यार भी जब द्वापर युग से अशुद्ध हुआ, जिसमें स्वार्थ और सब चीजें मिक्स हो गई उस प्यार के अंदर, तो फिर वो विकृत हो गया और उसके कारण ही विश्व की आज क्या हालत है ये तो हम सब देख रहे हैं ना। प्यार तो है लेकिन विकृत प्यार है, और उसी के कारण शांति नहीं है, स्नेह नहीं है, दुख है, अशांति, रोग बढ़ते हैं, उसका कारण भी ये शुद्ध प्यार नहीं है। विकृत प्यार के कारण मानसिक बीमारियां भी इतनी और शारीरिक बीमारियां भी इतनी ही है। कारण क्या है, आप सब तो न्यूज भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, देखते हैं ना कितना एज डिफरेंस, लेकिन विकारों के कारण विवेक खत्म हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है और कोई भी प्रकार का कुकर्म व्यक्ति कर बैठता है, खून कर बैठता है, मर जाता है, मार डालता है, कितने ऐसे किस्से। क्या है, विकृत प्यार, अशुद्ध प्यार ने संसार की क्या स्थिति कर दी है। हमारे सामने ये जो देवियां हैं, ये बहुत सुंदर स्नेह और शक्ति का बैलेंस का एक सैंपल और एग्जाम्पल है। देवियों की दिखाते हैं ना अष्टभुजाएं, भुजाएं कोई एक व्यक्ति को इतनी नहीं होती है, लेकिन इनकी भुजाएं इतनी दिखाते हैं, और भुजाओं में क्या दिखाते हैं, एक तरफ कमल जो बहुत कोमल सौम्य सुंदर, कमल कितना अच्छा लगता है तालाब में, और एक हाथ में कमल है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल भी है, बैलेंस। एक तरफ देवी के हाथ में ज्ञान का शंख भी है, ज्ञान शंख बजाती है, और समझाने पर यदि काम न होता हो तो फिर स्वदर्शन चक्र भी दिखाते हैं देवी के हाथ में। سمجھایا, نہیں سمجھے تو پھر سدرشن چکر بیلنس ہے نا. ایک طرف دیوی کے ہاتھ میں شاستر بھی دکھاتے ہیں, کتاب شاستر بھی دکھاتے ہیں, دوسری طرف تلوار بھی دکھاتے ہیں. شاستر شاستر دونوں چیزوں کا کیا ہے, بیلنس ہے دیوی کے جیون میں. تو اسی لیے ہمارے جیون میں بھی ہم سب کا لکش بھی ہے دیوی سمان سمپن اور سمپورن بننا. تو ہمارے ویکتیگت جیون میں بھی بیلنس چاہیے, گیان یوگ کا بیلنس, سیوا اور یوگ کا, یاد اور سیوا کا بھی کیا کہتے ہیں بیلنس, دھارنائیں, سیوا بھی کرو لیکن دھارنائیں بھی ہو, وہاں کہتے ہیں دھارن کر کے سیوا کرو, ہے نا بیلنس. کئیوں کو سیوا کا بہت شوق ہوتا ہے, دھارنا نہیں اچھی لگتی, تو ان بیلنس ہے. آدھیاتمک جیون کے اندر بھی بیلنس کی ضرورت ہے ہمارے سو پروشارتھ کے لیے. آپ ویوہارک جیون جیتے ہو اس کے اندر بھی سمبندھوں کو نبھانے میں بھی کیا چاہیے, بیلنس چاہیے. کس کے لیے زیادہ کس کے لیے کم, تو دیکھو سمبندھ ٹکتے نہیں ہے, بیلنس ہر جگہ پر ضروری ہے. تو آج ہم سب اس چیز کے لیے درڑھ سنکلپ کریں کہ ہمارے جیون میں بھی سنیہ اور شکتی دونوں چیزوں کا بیلنس بنا کر آدھیاتمک جیون بھی, ویوہارک جیون بھی, ویکتیگت جیون بھی بہت اچھے سے ہم نبھا کر کے چلیں گے. اوم شانتی.